ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवास प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानिब से है जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 25 अक्टूबर 2020 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून: मौत के बाद इम्तिहान। सुनहरी मतन: पत्रस। खुदावंद दीनदारों को आजमाइश से निकालना जानता है। जवाबी मुतालिया: याकूब। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामल हो जाओ और तुम्हें किसी बात की कमी न रहे। मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो ज़िंदगी का वो हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाना। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। इसलिए सारी निजासत और बदी के फजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है। दरसीबाज बाइबल में से मत्ती: और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। मत्ती: उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब अबलीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। फिर अबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और सब शान शौकत उसे दिखाईं, और उसे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब अबलीस उसके पास से चला गया और देखो, फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। मत्ती: और जब यीशु ये सब बातें कर चुका तो ऐसा हुआ कि उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फसा होगी और इब्ने आदम मसलूब होने को पकड़वाया जाएगा। उस वक्त सरदार काहिन और कौम के बुजुर्ग कायफा नाम सरदार काहिन के दीवान खाना में जमा हुए और मशवरा किया कि यीशु को फरेब से पकड़कर कत्ल करें। और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फिसा खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसा करूँगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया और फिसा तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा। फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। उस वक्त यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ला की भेड़ें परागंदा हो जाएंगी, लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने जवाब में उससे कहा, गो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी इनकार हरगिज न करूंगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। मगर ये सब इसलिए हुआ कि नबियों के नविश्ते पूरे हों। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। और पतरस बाहर सहन में बैठा था कि एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने ये कहकर इनकार किया कि मैं नहीं जानता तू क्या कहती है। और जब वो ड्योढ़ी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखा और जो वहां थे उनसे कहा, ये भी यीशु नासरी के साथ था। उसने कसम खाकर फिर इनकार किया कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर कहा, बेशक तू भी उनमें से है, क्योंकि तेरी बोली से भी जाहिर होता है। इस पर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। और फिलफौर मुर्ग ने बांग दी। पतरस को यीशु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार रोया। जबूर। ऐ खुदा, अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के बायस मेरी खताएं मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूं और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने फक्त तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नज़र में बुरा है। देख, तू बातन की सच्चाई पसंद करता है और बातन में मुझे ही दानाई सिखाएगा। जूफे से मुझे साफ कर तो मैं हूँगा, मुझे धो और बर्फ से ज़्यादा सफ़ेद हूँगा। मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारियाँ मिटा डाल। ऐ खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल। मुझे अपने हजूर से खारिज न कर और अपनी रूह को मुझसे जुदा न कर। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। ऐ खुदा, तू शिकस्ता और खस्ता दिल हकीर न जानेगा। याकूब। बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। ऐ गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो और ऐ दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। खुदा उनके सामने फिरौतनी करो, वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। अब मैं मेरी बिकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दर्सी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ मैं से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। और खुदा हमें आजमाइश में नहीं डालता बल्कि हमें गुनाह, बीमारी और मौत से बचाता है। इलाही मोहब्बत इंसान की इसलाह करती और उस पर हुक्मरानी करती है। इंसान माफी मांग सकते हैं लेकिन सिर्फ इलाही असूल ही गुनाहगार की इसलाह करता है। यीशु ने गुनाह को बाहर निकालने से पहले इसे अयां किया और मलामत किया। गलती के लिए जो वाहिद सजाए मौत उसने दी वो थी, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो। इस बात की मजीद तस्दीक कि यीशु की सरजनश बहुत नकीली और चुभने वाली थी उसके अपने अल्फाज में पाई जाती है। इस कदर शदीद बयान को जरूरी साबित करते हुए जब उसने बदरूहों को निकाला और बीमार और गुनाहगार को शिफा दी। गलती की दस्तबरदारी मादी फहम को इसके झूठे दावों से महरूम करती है। पेंडुलम की तरह गुनाह और माफी की उम्मीद में झूलते हुए खुदगर्जी और नफ्स परस्ती को मतवातर तनजली का मौजब बनते हुए हमारी अखलाकी तरक्की धीमी हो जाएगी। मसीह के मुतालबे पर बेदार होने से बशर मसाइब का तजर्बा करते हैं। ये उन्हें एक डूबते हुए शख्स की मानद खुद को बचाने की भरपूर कोशिशें करने की तरगीब देता है और मसीह के बेशकीमत खून के वसीला ये कोशिशें कामयाबी का सहारा पाती हैं। अगर तब्दीली जिसे मौत कहा जाता है गुनाह بیماری اور موت کے یقین کو تباہ کر دیتی ہے، تو اس شکست کے موقع پر خوشی فتح مند ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے مستقل ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں، کاملیت صرف کاملیت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ وہ جو ناراض ہیں تب تک ناراض ہی رہیں گے جب تک الہی سائنس میں مسیح یعنی سچائی تمام تر گناہ اور جہالت کو طرف نہیں کرتا۔ یہ قیاس رائیاں کہ گناہ معاف کیا جاتا ہے لیکن بھولا نہیں جاتا کہ گناہ کے دوران خوشی اصل ہو جاتی ہے، کہ جسم کی نام نہاد موت گناہ سے آزاد کر دیتی ہے، اور یہ کہ خدا کی معافی گناہ کی تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ سب گمبھیر غلطیاں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب آخری نرسنگا پھونکا جائے گا سب ایک پل میں بدل جائے گا، مگر حکمت کا یہ آخری بلاوا تب تک نہیں آ سکتا جب تک بشر مسیحی کردار کی ترقی میں ہر ایک چھوٹے بلاوے کو پہلے سے ہی تسلیم نہ کرتے ہوں۔ انسان کو یہ گمان رکھنا چاہیے کہ موت کے تجربے کا یقین انہیں جلالی ہستی میں بیدار کرے گا۔ عالمگیر نجات ترقی اور امتحان پر مرکوز ہے، اور ان کے بغیر غیر ممکن الحصول ہے۔ آسمان کوئی جگہ نہیں، عقل کی یہ الہی حالت ہے جس میں عقل کے تمام تر ظہور ہم آہنگ اور فانی ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں گناہ نہیں ہے، اور انسان وہاں خود کی راست بازی کے ساتھ نہیں خداوند کی سوچ کی ملکیت میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ کلام یہ کہتا ہے۔ آخری عدالت انسانوں کا انتظار نہیں کرتی، کیونکہ حکمت کا روز محشر ہما وقت اور متواتر طور پر جاری و ساری ہے، حتیٰ کہ وہ عدالت بھی جس کے وسیلہ فانی انسان ساری مادی غلطی سے بے نقاب کیا جاتا ہے۔ جہاں تک روحانی غلطی کا تعلق ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ظاہر کی گئی سچائی ابدی زندگی ہے۔ بشر جب تک یہ نہیں سیکھتا کہ خدا ہی واحد زندگی ہے، وہ غلطی کے عارضی ملبے، گناہ، بیماری اور موت کے عقیدے سے کبھی نہیں باہر آ سکتا۔ مادے پر زندگی کا بھروسہ ہر قدم پر گناہ کرواتا ہے، یہ الہی ناراضگی کو پالتا ہے، اور یہ یسوع کو قتل کرے گا کہ شاید وہ تکلیف دہ سچائی کے لیے ایک رکاوٹ تھا۔ مادی عقائد روحانی خیال کو ذبح کریں گے جب کبھی اور جہاں کہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اگرچہ غلطی کے پیچھے ایک جھوٹ یا ہیلوں کا احساس جرم چھپا ہوتا ہے، مگر غلطی پر ہمیشہ کے لیے مہر ثبت نہیں کی جا سکتی۔ سچائی اپنے ابدی قوانین کے وسیلہ غلطی کو بے نقاب کرتی ہے۔ سچائی غلطی کو اپنے آپ سے فریب دلوانے کا موجب بنتی ہے، اور غلطی پر حیوان کا نشان لگاتی ہے، حتیٰ کہ احساس جرم کے بہانے کی یا اس پر مہر ثبت کرنے کی رغبت کو سزا دی جاتی ہے۔ انصاف سے اجتناب اور سچائی سے انکار گناہ کو مسلسل ہونے، جرم کو بڑھاوا دینے، قوت ارادی کو خطرے میں ڈالنے اور الہی رحم کا مذاق اڑانے کا رجحان پیدا کرتے ہیں۔ کرسچن سائنس انسان کو خواہشات کا مالک بننے، شفقت کے ساتھ نفرت کو ایک تعطل میں روکنے، پاکیزگی کے ساتھ شہوت پر، خیرات کے ساتھ بدلے پر فتح پانے، اور ایمانداری کے ساتھ فریب پر قابو پانے کا حکم دیتی ہے۔ اگر آپ صحت، خوشی اور کامیابی کے خلاف سازشیوں کی ایک فوج نہیں لانا چاہتے تو ان غلطیوں کو ابتدائی مراحل میں ہی تلف کر دیں۔ ایک قصوروار ضمیر کے مجموعی اثرات کو برداشت کرنے کی نسبت یہ بہتر تھا کہ زمین پر ہر وبا کو ظاہر کیا جائے۔ غلط کام کرنے کا مستحکم شعور درست کام کرنے کی خصوصیت کو تباہ کرنے کا رجحان رکھتا ہے۔ اگر گناہ سے پشیمانی نہیں ہوتی اور اسے کم نہیں کیا جاتا، تو پھر یہ جسمانی اور اخلاقی تباہی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ وہ اخلاقی سزائیں جن کو آپ نے اوڑھ رکھا ہے اور جو بیماری ان سے پیدا ہوتی ہے، ان کے وسیلہ آپ کو فتح کیا جاتا ہے۔ گناہ آلود سوچ کے درد اس کی تسکین سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ مادی تکلیف پر یقین انسان کے لیے اپنی غلطیوں سے پیچھے ہٹنے، بدن سے روح کی جانب پرواز کرنے اور خود سے الگ الہی وسائل سے التماس کرنے کا موجب بنتا ہے۔ جذبات، خود غرضی، نفرت، خوف، ہر سنسنی خیزی روحانیت کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہستی کی افراد خدا یعنی اچھائی کی طرف ہے۔ ہم بھرے ہوئے برتنوں کو پھر سے نہیں بھر سکتے، انہیں پہلے خالی ہونا ہوگا۔ آئیے ہم غلطی سے منحرف ہوں، پھر جب خدا کی آندھی چلتی ہے तो हम अपने करीबी खस्ता हालों को गले नहीं लगाएंगे। मादी अकल में से गलती को बाहर निकालने का रास्ता ये है कि उसमें मोहब्बत की सैलाबी लहरों के वसीला सच्चाई को भर दिया जाए। मसीही कामलियत को किसी और बुनियाद पर फतह नहीं किया जाता। पाकिजगी पर पाकिजगी की पवंदकारी करना, ये फर्ज करना कि गुनाह बिना तर्क किए मुआफ किया जा सकता है, ऐसी ही बेवकूफ़ी है जैसे मच्छरों को नकेल डालना और ऊँटों को निगलना होता है। अगर इंसान मादी फहम के नाम नहाद दुखों और खुशियों पर रखने वाले ईमान की निस्बत आधा ईमान ही अकल की साइंस के मुताले पर रखें, तो वो बद से बदतरीन की तरफ नहीं जाएंगे जब तक कि कैदोबंद से उनकी तरबियत ना हो जाए, बल्कि पूरी इंसानी नस्ल मसीह के मेयारों के वसीला, सच्चाई के तर्ज फिक्र और कबूलियत के वसीला रिहाई पाएगी। इस जलाली नतीजे के लिए क्रिश्चियन साइंस रूहानी इदराक की मिशल रोशन करती है। इस साइंस के बगैर सब कुछ काबिल तब्दील है, मगर लाफानी इंसान अपनी हस्ती के इलाही असूल यानी खुदा के साथ हम आहंगी में ना गुनाह करता, दुख उठाता है और ना मरता है। तब हमारी ज्यारत के आयाम ख़त्म होने की बजाय बढ़ जाएंगे जब खुदा की बादशाही ज़मीन पर आती है, क्योंकि हकीकी राह मौत की बजाय ज़िंदगी की जानब ले जाती है और ज़मीनी तजर्बा गलती की महदूदियत और सच्चाई की उन महदूद खसूसियात को ज़ाहिर करता है जिनमें खुदा इंसान को सारी ज़मीन पर इख्तियार अता करता है। मसीह के लिबास की मानद रूह का जामा सफ़ेद बराक होता है, इसलिए इस दुनिया में भी तेरा लिबास हमेशा सफ़ेद हो। मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त फतह करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा, ईमानदार साबित हुआ, तो ज़िंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। याकूब 1:12। अब मैं मेरी बेकरेडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोजाना के 3 फ़राइज पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुना मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महजाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और माफ़ी से मोहब्बत की शीरीय साइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशंगोइयों, मुनसफियों, मुजम्मतों, इसलाहों, गलत तासरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज़ के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ ख़ुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बायस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।